अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम्। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है, ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है, ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए, नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए,
ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए।
इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
ओम शांति। किसी ने एक सज्जन व्यक्ति से पूछा कि उम्र और जिंदगी इन दोनों में क्या फर्क है, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि उम्र वो है जो अपनों के बिना कटती है, और जिंदगी वो है जो अपनों के साथ बीतती है, साथ कटती है। अर्थात मानव जीवन में संबंधों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हमारा जीवन एक संबंधों की धुरी पर ही चलता रहता है, हमारी जो जीवन लीला है वो संबंधों के ऊपर डिपेंड करती है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम संबंधों के बीच में ही रहते हैं। यदि कहा जाए कि जीवन एक संगीत है, तो संबंध उस संगीत के लिए एक साज है। जैसे साज के बिना गीत संगीत अधूरा होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि जीवन से संबंधों को निकाल दिया जाए तो मानव जीवन एक रूखा सूखा जीवन बन जाएगा। उसमें कोई रस नहीं होगा, उसमें कोई खुशियां नहीं होगी, कोई मौज नहीं होगी, आनंद नहीं होंगे। तो मानव जीवन में संबंधों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, लेकिन वर्तमान समय देखा जाता है कि जो संबंध हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए अभिन्न अंग हैं, जिनके माध्यम से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें संबंधों के माध्यम से उमंग उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, हमें संबंधों के माध्यम से सहयोग मिलता है। आज वही संबंध बहुत सारे कारणों से हमारे इस जीवन में जैसे कि एक मुसीबत बने हुए हैं। आज वर्तमान समय संबंध व्यक्ति को एक दलदल का अनुभव कराते हैं, जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ हो और वो चाहे कि हम तेज दौड़ लगाएं तो पॉसिबल नहीं होगा। वर्तमान समय संबंध एक जाल और जंजाल के रूप में अनुभव हो रहे हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने आप को फंसा हुआ अनुभव करते हैं। आप सभी सहमत हैं इस बात से? तो जीवन में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, और उन अनेक कारणों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मुख्य कारण है कॉन्फ्लिक्ट्स, संबंधों में संघर्ष, संबंधों में झगड़े, संबंधों में टकराव, संबंधों में तकरार, संबंध में द्वंद, संबंध में युद्ध। तो वर्तमान समय संबंधों में ये सारी बातें देखने में आती हैं और सबको इसका अच्छा खासा अनुभव होता है, क्योंकि आप हम सब संबंधों के बीच में ही रहते हैं। तो संबंधों में सबसे पहली बात है कि जो टकराव है, जो युद्ध है, वो किस किस रूप में होता है। सबसे पहला है मन में संकल्पों के रूप में। हम संकल्पों में आपस में युद्ध करते हैं। हमें किसी की बात पसंद नहीं आई, किसी ने कुछ कहा, उसकी बात हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमारे मन में फिर उसके लिए संघर्ष चलता है, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हम मुख से उससे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन संकल्पों से उसको हम सब कुछ सुना देते हैं। तो पहला है संकल्प या मन में, दूसरा है वाणी से, अब शब्दों के रूप में, वाद विवाद के रूप में, और तीसरा है कर्मों में। तो ब्राह्मण आत्माएं यहां तक तो नहीं पहुंचती हैं कि कर्मों में किसी से फाइटिंग हो जाए, तो कर्मों में हाथापाई हो जाना ये भी एक लड़ाई का स्वरूप है, प्रैक्टिकल स्वरूप जो सबको देखने में आता है। अगला है एक साइलेंट मौन युद्ध, जैसे किसी ने कोई बात पूछी और हमको उसकी बात पसंद नहीं आई तो हम उसको जवाब नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, यस या नो कोई भी आंसर नहीं देते हैं, तो वो भी एक लड़ाई का एक स्वरूप है। और वर्तमान समय जो सबसे बड़ा एक स्वरूप है वो है मीडिया। मीडिया के माध्यम से लोग एक दो को बहुत सारे ट्वीट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से एक दो को बातें निकालते रहते हैं, अपना जो गुस्सा है, क्रोध है, वो निकालते रहते हैं। तो ये बहुत सारे स्वरूप हैं युद्ध के, झगड़े के, लड़ाई के, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी जो गुस्सा है वो दूसरों पर निकालता है। आंखों से भी, फेस से। वो क्या होता है? अच्छा, इमोजेस, इमेजेस। तो अभी आप हम सब देखेंगे कि जीवन में जो ये बातें हैं, संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण से जीवन में, संबंधों में ये संघर्ष चलता है, और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, और उससे हमें क्या कैसे मुक्ति पानी है। बाबा ने हमें हर बात के लिए शिक्षा दी हुई है। तो सबसे पहली बात है डिसेप्शन, धोखा, किसी को धोखा देना। ये सबसे बड़ा एक कारण है संबंधों में टकराव पैदा कर होने का। महाभारत में एक बहुत बड़ा एक कारण यह भी है युद्ध का, कि जो दो परिवार थे कौरव और पांडव, उसमें कौरवों ने पांडवों को हमेशा धोखा दिया है, बचपन से ही उनके साथ धोखा किया। बचपन में भीम को खीर में जहर मिला के खिला दिया, वहां से उन्होंने धोखे का अपना काम शुरू किया। और पांडवों के साथ लाक्षाग्रह में आग लगाकर उनके साथ धोखा किया, और साथ साथ जो उन्होंने चेस खेलते थे उसमें भी उन्होंने चीटिंग की, उनको धोखा दिया, उनको हराया। तो इसके कारण से पांडवों के मन में, विशेषकर भीम और अर्जुन के मन में, उनके प्रति क्रोध की भावना पैदा हुई, बदले की भावना पैदा हुई। तो जहां डिसेप्शन है, जहां धोखा है, वहां पर व्यक्ति के मन में बदले की भावनाएं पैदा होती हैं। तो वर्तमान समय संबंधों में ये हर एक के जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये बातें होती हैं कि दूसरे व्यक्ति से धोखा मिलता है, चाहे पति पत्नी हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं। विशेषकर पति पत्नी का जो संबंध है, वहां ये बातें ज्यादा देखने में आती हैं, और उसके कारण से उनका संबंध बिगड़ जाता है, संबंधों में टकराव पैदा हो जाता है, संबंधों में गैप हो जाता है। और साथ साथ जो फ्रेंड्स होते हैं, अगर किसी एक फ्रेंड्स ने दूसरे के साथ थोड़ा भी कुछ ऐसा कोई अभिनय किया कि उसको धोखे की महसूसता हुई, तो वो दोस्ती फिर दुश्मनी में बदल जाती है। तो सबसे पहली बात है कि जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है रिलेशंस में, संबंधों में, उसका मूल कारण है डिसेप्शंस, धोखा। तो बाबा ने इसके लिए हमें क्या कहा है, इससे क्या होता है, इससे हमारे संबंध बिगड़ते हैं, संबंधों में दूरियां बन जाती हैं, रहते साथ में लेकिन आपस में बात नहीं, बातचीत नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई सहयोग नहीं। तो डिसेप्शन से एक बहुत बड़ा नुकसान जो होता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, करेक्शन, परखने शक्ति। हाँ, हमें इसके लिए परखने की शक्ति को यूज करना है, सहन शक्ति को, अपने संबंधों को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारी बातों को करना होता है। तो पहली बात है डिसेप्शन, और दूसरी बात है ड्यूल पर्सनैलिटी, दोहरा व्यक्तित्व, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। बाबा कहते हैं ये बहुत खौफनाक है, ऐसे व्यक्ति बहुत खौफनाक होते हैं, सामने बहुत प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, और पीठ पीछे आपकी गिलानी करेंगे, आपकी बहुत सारी कमियों को दूसरों तक फैलाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो संबंधों में वर्तमान समय देखा जाता है, कि सामने कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। तो जहां ये डबल पर्सनैलिटी है, जहां ये डबल माइंडेड लोग गेम खेलते हैं, तो वहां संबंध कभी भी अच्छे नहीं रह सकते, वहां पर संबंधों में कहीं नजर कहीं निशाना, अर्थात किसी को टारगेट करते हुए किसी और को सुनाएंगे, ऐसे दूसरे कंधे पर बंदूक रख करके चलाना, कहें किसी और को, लेकिन इशारा कहीं पर और कहीं होता है। तो ये भी एक बहुत ही खौफनाक आदत है, जो यदि हमारे अंदर ये आदत है तो हमारे संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे, संबंधों में ये टकराव पैदा हो जाएगा। तो दूसरी बात है ये खौफनाक आदत, दोहरा व्यक्तित्व। और तीसरी पॉइंट है फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, दूसरों में कमियां ढूंढते रहना। ये भी व्यक्ति की एक बहुत बड़ी कमजोरी, बहुत बड़ी एक आदत होती है, जो हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। किसी में 10 विशेषताएं होंगी, उसमें एक छोटी सी कोई कमी होगी तो उसकी उस कमी को खोज लेंगे, 10 विशेषताओं पर ध्यान नहीं देंगे। उसकी विशेषता हो सकती है, लेकिन ये संबंधों के लिए घातक है, हानिकारक है, नुकसानकारक है। कि हम हर किसी भी आत्मा की उसकी उस विशेष उसकी उस कमजोरी को खोज करके फिर उसके साथ हम व्यवहार में आते हैं। तो यदि वो हमारी हमको अपना पुरुषार्थ करना है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो हमारे उन दोनों के संबंध बिगड़ जाते हैं। तो ये भी एक आदत होती है कि दूसरों में कमियां खोजना, कि कौन किस में क्या कमी है, किस में कौन सी ऐसी कमजोरी है, और उसकी उस कमजोरी को लेकर के फिर हम उसके साथ व्यवहार में आते हैं। तो ये हमारे संबंधों को बिगाड़ता है, इससे संबंधों में टकराव पैदा हो जाता है, फिर दूसरों से सहयोग नहीं मिलता है। यदि हम किसी की कमजोरी को बार बार हम यदि उस, या उसको याद दिलाएंगे या किसी और को हम उस कमजोरी को फैलाएंगे, तो वो व्यक्ति कभी भी हमारा सहयोगी बनेगा नहीं बनेगा। तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, संबंधों में टकराव होता है, हमें उसे सहयोग नहीं मिलता है, हमारी यूनिटी बिगड़ जाती, टूट जाती है। तो हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने क्या कहा कि हर आत्मा की विशेषता को देखो। भगवान ने संसार में आकर क्या किया कि हमारी बहुत सारी कमियां भी थीं, उन कमियों को जानते हुए देखते हुए भी हमारी विशेषता को देखा, और बाबा ने उस विशेषता के माध्यम से हमारी प्रशंसा की कि आप तो कितने अच्छे हो, संसार में सबसे महान हो, संसार के लिए आदर्श हो। तो बाबा ने हमारी विशेषताओं को देख करके हमें इस जीवन में आगे बढ़ाया। तो हमें भी क्या करना है, जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, या जहां भी हम हैं, जिस भी फील्ड में, जो भी हमारे साथी सहयोगी हैं, हमें हर एक आत्मा की विशेषता को देखना है, उसकी विशेषता का वर्णन करना है, उसकी विशेषता के साथ उसके साथ संपर्क में आना है, उसकी विशेषता को कार्य में लगाना है। यदि हम ये करते हैं तो हमारे संबंधों में जो कन्फ्लिक्ट है, जो आपस में टकराव है, तकरार है, संघर्ष है, वो खत्म हो जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो संघर्ष हमेशा जारी रहेगा, उससे हम छूट नहीं पाएंगे। और वर्तमान समय संगम युग का जो अनमोल समय है, वो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम अंत में अपने आप को खाली हाथ पाएंगे। तो तीसरी बात है फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, हमें अपने इस नेचर को बदलना है। नेचर में क्या धारण करना है, दूसरे की विशेषताओं को देखना, न कि कमी कमजोरियों को देखना, दूसरों के गुणों को देखना। साकार बाबा ने भी यज्ञ में जो उस समय आत्माएं आई, उनमें बहुत सारी वैरायटी आत्माएं थीं, हर एक की अपनी विशेषताएं थी, तो उनकी कुछ कमियां भी थीं, लेकिन बाबा ने, साकार बाबा ने जिस आत्मा की जो विशेषता थी उस विशेषता के अनुसार उसको सेवाएं दी, तो जिसके माध्यम से वो इस जीवन में आगे बढ़ सके और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। तो तीसरी बात है फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, इससे हमें अपने आप को बचा के रखना है। यदि हमें संबंधों को अच्छा बना के रखना है, संबंधों का लाभ उठाना है, तो अगली बात है संस्कार। वर्तमान समय सभी के अंदर पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, आधा कल्प के कठोर संस्कार हैं, और वो संस्कार एक चट्टान के माफक हैं। तो यदि जब दो आत्माएं उन संस्कारों के साथ आपस में मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, टकराव होता है, और वो टकराव कितना भयानक होता है, जैसे कि विस्फोट होता है। दो चट्टानें आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो वर्तमान समय जो संस्कार हैं, आदतें हैं, यदि उन आदतों के आधार पर हम किसी से संबंध रखते हैं, हमारा व्यवहार है, बार बार उन संस्कारों को हम यूज करते हैं, उन आदतों को हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं बनेंगे। संबंधों में हमेशा टकराव होगा, संबंधों में दूरियां बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि आपको उन संस्कारों को यूज नहीं करना है। ये संस्कार भी एक अग्नि के समान है जो दोनों को जला करके भस्म कर देते हैं, हमारे संबंधों को तार तार कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि इन संस्कारों के बजाय जो आपके अनादि संस्कार हैं या जो आदि संस्कार हैं, उन संस्कारों को अप्लाई करना है। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा था कि वर्तमान समय जो एक आग है, संबंधों में लगाओ, देह और देह के संबंधों के प्रति लगाओ। तो बाबा ने कहा ये भी एक अग्नि है, तो इस अग्नि को शांत करने के लिए विकारों की अग्नि से बचने के लिए जो आपके अनादि संस्कार हैं या फिर जो आदि संस्कार, उन संस्कारों को यूज करो, उन संस्कारों को अप्लाई करो, तो उस अग्नि से आप बच सकेंगे। तो यहां संस्कारों के जो टक्कर है, उस टक्कर से बचने के लिए हमें जो हमारे अनादि संस्कार हैं या फिर जो आदि संस्कार हैं, उन संस्कारों के तहत हमें संबंध संपर्क में आना है। तो एक तो हमें अपने उन संस्कारों को इमर्ज करना है, साथ साथ अन्य आत्माओं में भी उनके वो संस्कार देखने हैं कि इनके संस्कार तो अच्छे संस्कार वाली आत्माएं जो हैं, वर्तमान समय संस्कार इनके बिगड़े हुए हैं, लेकिन जो उनके अनादि संस्कार हैं वो श्रेष्ठ संस्कार हैं। संस्कारों के टक्कर से बचने के लिए हमें उनके भी और स्वयं के भी अनादि और आदि संस्कारों को याद रखना है, उसको अप्लाई करना है, सिर्फ याद नहीं रखना है, उसको अप्लाई भी करना है। तो हमारे संबंधों में जो टकराव है, कन्फ्लिक्ट है, हम उससे बचे रहेंगे। अगली पॉइंट है स्वार्थवश बस किसी को मिसयूज करना। संसार में ये भी एक बहुत बड़ी, लोगों में एक ये खामी होती है, ये बहुत बड़ी एक विशेषता नहीं है, ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि दूसरी आत्मा को अपने स्वार्थ बस उसको यूज करना, उसको मिसयूज करना अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो देखते हैं कि संसार की ऐसे समाज में, परिवार में ऐसे जो लोग, जो भोले लोग होते हैं, उनको वो यूज करते हैं, और भोले लोग जो होते हैं उस समय उसको समझ नहीं पाते कि ये व्यक्ति हमारे साथ किस भाव से ये हमें यूज कर रहा है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब उसको एहसास होता है कि हमारा समय, हमारी एनर्जी इसमें बहुत वेस्ट हो रही है, जब उसको एहसास होता है तो फिर आपस में संघर्ष पैदा होता है, आपस में टकराव होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, कमी है, एक अवगुण है, एक बुराई है, जो हम किसी को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मिसयूज करते हैं। हमें सबसे सहयोग तो लेना है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि हम जो से सहयोग ले रहे हैं उससे उसको नुकसान है या फायदा है। ऐसा नहीं हम अपने स्वार्थ से सहयोग तो ले रहे हैं लेकिन उससे उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसका समय वेस्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो यदि ऐसा होता है तो हमारे संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे, संबंध में टकराव होने की संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आज सहयोग दे रहा है, जब उसको मालूम पड़ेगा तो वो सहयोग नहीं देगा, और इससे आपस में फिर दूरियां बन जाएंगी। तो बाबा ने क्या कहा इसके लिए, हमें सबसे सहयोग लेना तो है लेकिन कैसे, सहयोग के नोट जेब में रखो, हमें किसी को मिसयूज नहीं करना है, सहयोग के भाव से उसे सहयोग लेना है। स्नेहयुक्त व्यवहार। अगली बात है अनुमान लगाना। वर्तमान समय संबंधों का टकराव का एक बहुत बड़ा कारण है अनुमान लगाना। कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे और हम यदि उन्होंने हमको देख करके मुझे देख करके उन्होंने अपनी बात को रोक लिया तो हमारे मन में फिर क्या ख्याल चलते हैं, जरूर ये हमारे बारे में कुछ सोचते होंगे, हमारे बारे में कुछ इनमें चर्चा चल रही है, हो सकता है वो उनके अपनी कोई व्यक्तिगत बातें हो रही होंगी, लेकिन हमारे मन में क्या ख्याल चलता है कि ये हमारे बारे में अवश्य कुछ सोचते होंगे। तो ये अनुमान की जो बीमारी है, अनुमान का हनुमान, ये भी एक संबंधों में टकराव का बहुत बड़ा कारण है। तो जहां ये अनुमान की बीमारी है, अनुमान का ये कारण है, वहां संबंध कभी भी अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो परिवार में, समाज में, संबंधों में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं और हमारे संबंधों में इससे दूरियां बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा कि किसी के बारे में आपको अनुमान नहीं लगाने है, क्योंकि ये अनुमान की बीमारी बहुत गहरी बीमारी है, बहुत कड़ी बीमारी है। और एक बार मन में, बुद्धि में अनुमान बैठ गया तो उसको निकालना सहज नहीं है, मुश्किल है, इसकी किसी के पास कोई दवाई नहीं है। तो हमें किसी भी कारण से किसी के बारे में, कोई हमारे बारे में कुछ बात कर रहा है नहीं कर रहा है, ना तो हमें उसका अनुमान लगाना है, या कोई किसी और के बारे में कोई चर्चा कर रहा है क्या कर रहा है हमें उसके बारे में अनुमान लगाना है, या किसी की व्यक्तिगत लाइफ के बारे में हमें अनुमान लगाना है कि वर्तमान समय वो क्या कर रहा है, उन दोनों के आपस में कैसे संबंध हैं, वो दोनों आपस में वर्तमान समय क्या कर रहे हैं। हमें किसी के बारे में अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ब्राह्मण जीवन स्वपुरुषार्थ के लिए है, अपने आप को बुराइयों से मुक्त करने के लिए है, न कि दूसरों को देख करके अपने में बुराइयों को बढ़ाने के लिए या दूसरों को चिंतन में रहने के लिए। तो हमें किसी के बारे में भी कोई भी अनुमान नहीं लगाना है, हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना है, क्योंकि जहां अनुमान की बीमारी है वहां संबंध बिगड़ते हैं। जैसे ही हम किसी के बारे में सोचते हैं या अनुमान लगाते हैं, उसी समय से, जैसे ही संकल्प आया उसी समय से हमारा जो फैसला है वो हमारा शुरू हो जाता है और हम आहिस्ते आहिस्ते उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें किसी के बारे में अनुमान नहीं लगाना है। यदि आपको डाउट है कि हमारे बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे अपने स्वयं की कोई गलती होगी, हो सकता है हमारी कोई गलती है उसके बारे में वो चर्चा करें, तो यदि हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी गलती का वो आपस में चर्चा कर रहे थे तो अपने आप को हम सुधार सकते हैं ना, मालूम पड़ेगा तो एक ये बीमारी है, ये एक कड़ा संस्कार है कि अनुमान लगाना। तो जहां ये अनुमान की बीमारी है वहां संबंधों में टकराव है। और एक दूसरा कारण है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, अब हो सकता है कि उसके उन दोनों के आपस में नहीं बनती होगी, कुछ कारण होगा, और उस व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ कहा हमारे हमको कि वो आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहा था, तो इससे क्या होगा, उसको तो फायदा होगा जिसने हमारे को कहा, लेकिन हमारा दोनों हमारा और उसका तीसरे का आपस में टकराव हो जाएगा, संबंध बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि उससे संबंध खराब होते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो ऐसी बातें जो हैं इनका कोई हाथ पैर नहीं होते, ये बिना हाथ पैर की बातें होती हैं, इसलिए इन बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करना। इनको अफवाह कहते हैं, हवा, जो व्यक्ति अपने मन से इन बातों को बना करके पेश करते हैं। अगली बात है कि दूसरों के राय को, दूसरों की बात को रिगार्ड न देना। संबंधों में यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति दूसरे की राय को, दूसरे के जो बात है उसको रिगार्ड नहीं देते हैं, अगर कोई विशेष कार्य करना है, कोई बड़ा कार्य करना है, तो उसमें यूनिटी चाहिए। और यूनिटी में अनेकों का सहयोग होता है। यूनिटी के माध्यम से ही कोई बड़ा कार्य सफल होता है। और उसमें जो सभी की राय होती है, उस राय के माध्यम से ही वो यूनिटी शक्तिशाली बनती है। लेकिन किसी में यदि अहम भाव है, मैंपन है, और यदि वो अपनी बात को औरों पर थोपता है, दूसरों की राय को, दूसरों की बात को रिगार्ड नहीं देता है, नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तो इससे भी संबंधों में टकराव होता है, इससे भी आपस में दूरियां बढ़ती हैं। तो जो हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें कोई भी कार्य में सफलता हासिल करनी है, वो कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो जो यूनिटी की शक्ति है, जिससे कोई भी कार्य में सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो बाबा इसके लिए कहते हैं कि हर एक आत्मा के जो उसके विचार हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको पहले सुनो, समझो, उसके बाद में फिर आप डिसाइड करो कि उसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है नहीं करना है। लेकिन तुरंत ही उसको नेगलेक्ट नहीं करो, पहले उसकी राय को सुनो, समझो, अर्थात उसको रिगार्ड देना, सुनना अर्थात उसको रिगार्ड देना। तो यदि हम दूसरों की राय को, दूसरों की बात को रिगार्ड नहीं देते हैं, तो जिसकी बात को हमने रिगार्ड नहीं दिया, वो कभी भी सहयोगी नहीं बनेगा। जबकि जीवन में हर एक के सहयोग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, सहयोग से ही कोई भी कार्य में सिद्धि मिलती है। तो दूसरों से सहयोग चाहिए, दूसरों से मदद चाहिए, तो हमें हर एक की राय को, हर एक की बात को रिगार्ड देना है, सम्मान देना है। वो आपका व्यवहार अच्छा होगा इसलिए देता हो सहयोग, तो उसकी अपनी भावनाएं होंगी आपके प्रति कि आप जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। एक अगली पॉइंट्स है, रौब जमाना। संबंधों में एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग एक दो पर अपना रौब जमाने की कोशिश करते हैं, रौब के माध्यम से दूसरों को अपने अधिकार में रखने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाता है कि जहां ये आदत है कि दूसरों को रौब के माध्यम से अपने अंडर दबाकर रखना, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। थोड़े समय के लिए उसको एहसास होता है कि हम सफल हो रहे हैं, हमारी बात सभी मान रहे, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद मालूम पड़ता है कि हमारी बात को कोई भी स्वीकार नहीं कर रहे, कोई भी हमें सहयोग नहीं दे रहे। क्योंकि किसी को भी दबाकर रखना इस संसार में पॉसिबल नहीं है। यदि किसी को हम दबाकर रखने की कोशिश करेंगे, तो एक समय आता है जो वो व्यक्ति एक विस्फोट के रूप में उभर कर आता है, क्योंकि उसके अंदर जो भावनाएं जिसको वो दबाने की कोशिश करता है, वो भावनाएं और ही अग्नि का रूप लेती रहती हैं, एक भूकंप का रूप लेती रहती हैं, और एक समय आता है जो वहां पर विस्फोट हो जाता है। तो संबंधों में कोई भी है, चाहे कोई बॉस है या परिवार में कोई बड़े हैं, लीडर हैं, वो कभी भी दूसरों को रौब के माध्यम से अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं सीनियर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बॉस हूं। चाहे परिवार है या कहीं पर भी कोई भी संगठन है, कोई भी कंपनी है, क्योंकि जहां जहां ये बातें देखने में आती है, वहां पर वो संगठन नहीं चलता है, संगठन में आपस में टकराव हो जाता है, और फिर कोई किसी को सहयोग नहीं देता है। तो जो जीवन में सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, वो सफलता नहीं मिलती है। इसलिए किसी को रौब से नहीं, कैसे चलाना है, रुहाब से, प्यार से, स्नेह से। तो बाबा ने हम सबको ये विधि सिखाई है कि जो भी आत्माएं हैं, सभी को रुहाब से चलाना है, सभी को प्यार से चलाना है, रौब से नहीं। किसी पर यदि आप रौब थोपेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। थोड़े समय के लिए चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक वो नहीं चलेगा। इसलिए स्नेह से, प्यार से सबको चलाना है, और हर एक की विशेषता के अनुसार उसको चलाना है। ऐसा नहीं कि जो मैंने कहा वही करना है, जो मैं चाहता हूं वही होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। इस संसार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा की अपने अपनी विशेषता, अपने अपनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो उस अनुसार ही चल सकते हैं। इसलिए हमें किसी पर रौब नहीं चलाना है। एक दूसरा कारण है संबंधों में टकराव का, एक दूसरे को समय न देना। जब हम किसी के लिए कोई, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है और हम उसके पास मिलने नहीं जाते हैं, उससे हम उसका हालचाल नहीं पूछते हैं, तो इससे भी एक बहुत बड़ा आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा हो जाता है, तो इससे भी हमारा संबंध बिगड़ते हैं। संबंधों में से टकराव धीरे धीरे, उस समय नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन लंबे समय के बाद ये संबंध हमारे बिगड़ जाते हैं, संबंध बिखर जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि हम दूसरों को समय न देना। जब किसी को जरूरत है उस समय हम किसी को यदि समय नहीं देते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी उस समय उसे सहयोग नहीं मिलेगा। और एक कारण है कि बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा में जैसे कि तू तू करके बात करना, तुम करके बात करना, या किसी को अंगुली दिखा करके बातें करना, यह भी एक संबंधों को बिगाड़ने का बहुत बड़ा कारण है। तो जहां किसी के जीवन में, किसी के अंदर ऐसी अगर आदत है कि दूसरों के साथ ऐसे बात करते हैं कि तुमको मैंने ऐसे कहा था, तुमने सुना क्यों नहीं, तुम सुनते नहीं हो, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, इस प्रकार से यदि भाषा है तो दूसरे को इससे दुख पहुंचता है, उसका दिल दुखता है। तो जिस आत्मा को अपने शब्दों के माध्यम से किसी के दिल को दुखाया, वो आपके दिल के समीप कभी भी नहीं आएगा। इसलिए अपने बोलचाल की भाषा में भी ये शब्द, ये एक्शन कभी नहीं होने चाहिए, किसी से तू तू करके बात करना, किसी की बात को कट करना, किसी से तू तू करके, तुम करके बात करना, तू सुनता नहीं है, किसी को अपने से नीचा समझना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे संबंधों में टकराव होता है, संबंधों में मनमुटाव होता है, संबंधों में संघर्ष होता है, और हमारी जो दूरियां हैं वो बढ़ती रहती हैं, नजदीक आने के बजाय हम और दूर होते रहते हैं। तो इसके लिए कभी भी किसी के साथ ऐसा वार्तालाप में ऐसा व्यवहार नहीं करना है, सबके साथ रेस्पेक्ट से बात करनी है, आप कह करके। और एक दूसरी बहुत अच्छी पॉइंट है कि दूसरों को अपने से कमतर आंकना। किसी किसी में ये एक आदत होती है कि दूसरे को हमेशा ये सोचते हैं कि ये हमारे से कम है, जैसे कि हम सब कुछ हैं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और सामने वाला व्यक्ति जैसे कि कुछ भी नहीं है, जैसे कि बुद्धू है, बेसमझ है, अनपढ़ है, छोटा है या नया है, उसको कुछ भी नहीं पता। यदि इस प्रकार से हम किसी के साथ व्यवहार में आते हैं तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण है। हाँ, हम पुराने हैं और ये नया है। हो सकता है कि जो सामने वाली आत्मा है वो हमारे से बहुत आगे हो, जो विशेषता हमारे में नहीं है वो विशेषताएं उसमें है। लेकिन यदि हमारे अंदर ऐसा अगर भाव है दूसरों को कमतर आंकना, दूसरों को कम समझना, ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा अवगुण है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। यदि हम इस बात को जीवन में अप्लाई करते हैं तब भी हमारे संबंधों में टकराव पैदा होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता है। यदि किसी में कोई विशेषता है और उसकी विशेषता को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो वो कभी भी हमारे समीप, हमारे संपर्क में नजदीक नहीं आएगा, इससे संबंध बिगड़ेंगे। तो हर एक व्यक्ति को रिगार्ड, रेस्पेक्ट देना है, दूसरों को भी सम्मान देना है कि संसार में हर एक आत्मा विशेष है, हर एक आत्मा पे अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सब आत्माएं यूनिक हैं, एक दूसरे से आगे हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए सबको सम्मान देना है। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के कारण आपस में टकराव होता है, मनमुटाव होता है। तो सबसे पहली बात है कि इन बातों को जानना, जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, तो उन बातों को जानना और उस पर काम करना, अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए संबंधों के महत्व को जानना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में स्थायी खुशियों के लिए हमारे संबंधों का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो संबंधों के महत्व को जानना और संबंधों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो टकराव है, जो संघर्ष है, उससे होने वाले नुकसान को जानना, ये बहुत आवश्यक है। तो जब हम इन बातों को जानेंगे और बाबा ने जो हमें अनेक प्रकार की विधियां बताई हुई हैं उनके माध्यम से हम अपने संघर्ष को खत्म करेंगे तो इस जीवन में हम खुशियों का, मौजों का, आनंद का अनुभव कर सकेंगे, जो हम सभी का एक लक्ष्य है। ओम शांति।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए
के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुख में हो संसार। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते, जुआ नहीं है ये जीवन कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते, धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुख में हो